انہی لوگوں میں کچھ اور تھے. گیارہویں پارے کا آغاز ہے. گیارہواں پارا, یا تزرون الیکم اذا رجعتم, جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو طرح طرح کے عذر پیش کریں گے, مگر تم ان سے صاف کہہ دینا تم بہانے نہ کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے, اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں, ابر اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. ہائی لائٹ کیجیے گا, اب دیکھے گا نیکسٹ ٹائم موقع آئے گا تو کیا کرو گے. باتوں کی فکر نہیں کرو, یہ بتاؤ کہ کل آنے والے وقت کے لیے تم نے کیا سوچ رکھا ہے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جاننے والا ہے, وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو, کیونکہ یہ گندگی ہے. ان کا اصلی مقام جہنم ہے جن کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا. کیا سمجھ آ رہا ہے کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کسی کو ایگزامپٹ نہیں قرار دے سکتے. یہاں سے اب آخر تک جو حصہ ہے یہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غزوہ تبوک میں ہوا کیا. شروع میں تم نے بات کری, نکلے, بڑی مشکلات تھی, نکل گئے, چل پڑے, کچھ پیچھے رہے, کچھ نکلے, لیکن چلتے گئے. لیکن ہوا کیا, جب مسلمان تقریباً ایک مہینے کے سفر کے بعد وہاں پہنچے, ہرقل کو پیچھے سے خبریں آ چکی تھی کہ اللہ کے نبی تو ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں. اللہ نے ایسا روب ڈال دیا کہ سب بھاگ گئے, سامنا ہی نہیں کیا. دے کوڈنٹ فیس دیم. اللہ کے نبی ایک مہینہ تک وہاں بیٹھے رہے, آؤ بات کرو, آگے کرو, مارو ان کو, کوئی آیا ہی نہیں. ایک گولی نہیں چلی, ایک تیر نہیں ٹوٹا, ایک تلوار نہیں ٹوٹی, اور مسلمان وہاں سے بہت سارا مال غنیمت جو دشمن ایسے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے لے کر آئے. ایک بندہ نہیں مارا گیا تبوک میں. کبھی کبھی اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم نکلنا چاہتے ہو کہ نہیں. اللہ کو کیا لگے, میں اور آپ کبھی نکل بھی پڑتے ہیں تو ہوتا کہ مزہ ہی آتا ہے, اچھا ہی ہوتا ہے. صرف مشکل نکلنے وقت ہوتی ہے. آپ آزما کے دیکھیں, جس وقت اپنے ڈیسیزن بنانا ہوتا ہے وہ مشکل ہے. جو ہی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کسی کام سے گل شروع ہوتا ہے, چلی جاتی, ہو ہی جاتی, کر ہی لیتی کام, اوکے کر ہی دیتی, کیا فرق تھا, دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے, صحت تو چلتی رہے گی, بیماری تو ٹلی جانی تھی, سر درد تو وہاں جا کے ٹھیک ہوتا ہے. جب واپس گئے تو دھاک چھا گئی. تبوک کی فتح مسلمانوں کے لیے ایسی فتح ثابت ہوئی کہ جس نے عرب سے باہر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی. جیسے کوئی ٹیم میچ جیت کے آتی ہے نا تو ساری دنیا میں اس کے ہوائیں چلتی ہیں کہ یہ بڑی اچھی ٹیم ہے. یہی ہوا, کچھ نہیں کیا انہوں نے, بس سفر کی مشکلیں سہی, لیکن اللہ وہاں سے لے آیا. اب جب واپس آئے تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نفاق کے مارے ہوئے, اب وہ سچے جھوٹے بہانے, کیا کریں, دل بڑا کرتا ہے, پیار بڑا ہے آپ سے, یہ وہ. اللہ کہتے ہیں ان کی باتیں نہ سنو, یہ گندگی ہیں, ان کو چھوڑ دو ادھر ہی. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں, اور ان کے معاملے میں سمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کریں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں, یعنی بہت سمجھ کے دیتے ہیں. یہاں پتہ کیا چلتا ہے کہ علم کی کمی دل کو سخت کر دیتی ہے, اور حالات کی سختی اور جانوروں میں رہنے کی وجہ سے علم کا شوق کم ہو جاتا ہے. لا علمی بھی لا یشرون والے ان نفاق کو پیدا کرتی ہے. تو ایسے لوگ خوشی سے خرچ نہیں کرتے تھے, اگر کوئی مانگ بھی لے کچھ تو ایسے بوجھ کے ساتھ خرچ کرتے تھے, کراہیت سے خرچ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور تمہارے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے ان کو کس دیا. منافق پیچھے بیٹھ کے راستہ دیکھ رہے تھے کہ کب خبر آتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے لشکر سمیت مار دیے گئے. پیچھے خبروں کے انتظار میں وہ ٹی وی چینلز کھول کے بیٹھے ہوئے تھے, اب ذرا نیوز سنتے ہیں. افسوس کی بات ہے آج بھی امت مسلمہ میں اکثریت کو نیوز سننے کا بہت شوق ہے. وہ کہتے ہیں خبریں سنتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے, تو چلیے ساتھ چلتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کے بارے میں بری بری خبروں کا انتظار کر رہے ہیں, حالانکہ برائی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے, اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کا تقرب اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے, اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ دلگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ اب ان سب کی بات کر کے آگے دوسرے لوگ ہیں. جنگ کا قصہ پورا ہوا, لیکن اب اس کے نتیجے میں جو حقیقت سامنے آئی उसका तस्करा फरमाया وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبئی کہا اور وہ جو اس کے بعد آئے راست بازی میں ان کے پیچھے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی ہے عظیم الشان کامیابی یہاں سمجھ لیجیے دعا کیجیے اللہ میں السابقون میں کر دے آگے وہ نکلے گا جو پہلے سے تیار ہوگا رائٹ اور رانگ کسی ریس کو ذہن میں لائیے جو مینٹلی پریپیئر ہوگا موقع ملتے ہی نکل پڑے گا نیکیوں کے کام میں سابقون الاولون وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے تیار کر کے بستہ بیگ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں چابیاں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں پہلے سے چیک کرتے رہتے ہیں ٹائم کب ہے کب ہے وہ وقت ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے جیسے بعض لوگ دنیا کے لیے سابق ہونا لول ہونا چیک کرتے رہتے ہیں سیل کب لگ رہی ہے فلاں 30% پہ کیا یہ نومبر میں ایک آئے گا بلیک فرائیڈے لوگ آدھی رات کو تہجد میں کھڑے ہو نہ ہو وہ وہاں جا کے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈور کھلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اور یہی خبریں پاکستانیوں کی کسی نے سنائی کہ جب لون کی سیل لگتی ہے تو وہ کچھ اتنے کو پرنٹ کو کچھ اسپیشل پرائز پہ کرتے ہیں عورتیں بھیک مانگتی ہوئی دکھتی ہیں کسی نے مجھے شیئر کیا کہ عورتیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں خدا کے لیے یہ مجھے دے دو کسی اور کے سے پہلے مجھے دے دو تو یہ ہے نا سابقون الاولون دیکھیے دو ہی مجاہد ہیں یا دنیا کے مجاہد یا دین کے بنتے ہیں تو کھل کے کام کریں اور جو دنیا کا جہاد کرتا ہے پھر کھل کے دنیا کمائے پھر موج کرے مستی کرے انجام سب کو پتا ہے کس کا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے دنیا میں کہتے لو میں پرانا پرنٹ پہنوں پچھلے سال کا پرنٹ پہنوں یہ نئے سال کا یہ اگلے سال کا یہ بھی ایک پرابلم بن گیا کہ آپ کس سال کے لون پہنتے ہیں اور کس طرح کے کام کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں کدھر ہو اور دین میں کدھر ہو کیا یہاں سب سے آخر میں وہاں کہتے ہیں سیل شروع کب ہوگی یہاں کہتے ہیں قرآن ختم کب ہوگا اس دن ضرور بلائیے گا دعا کریں گے دعا میں شامل ہوں گے ہمیں ختم کا شوق ہے مومن کو سیل شروع ہونے کا ہے اللہ کہتا ہے سابقون الاولون کون ہے جو انتظار نہیں کرتے کہ رواج بن جائے فیشن بن جائے سب کر لیں فرسٹ امنگ اس دا فرسٹ کہ سب سے پہلوں میں پہلا رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتے کیلکولیٹنگ مائنڈس نہیں ہوتے ان کے ایفس اینڈ بٹس میں نہیں ہوتے یہ چل پڑتے ہیں یہ ہیڈ سٹارٹ لیتے ہیں یہ نوکریاں چھوڑتے ہیں دین سیکھنے کے لیے یہ سکولوں سے چھٹیاں لیتے ہیں دین سیکھنے کے لیے یہ دنیا کے چند فائدے چھوڑتے ہیں سیکھنے کے لیے یہ اپنی خواہشوں سے ایسے لڑتے ہیں جیسے دشمنوں سے لڑنا ہوتا ہے یہ ہے سابقون الاولون جو ہی موقع ملے دوڑ جانے والے مہاجرین کون ہیں جنہوں نے جابس چھوڑی بری عادات چھوڑی اور انصار کون ہیں جن کے ہاتھ لے رہے ہیں آپ دیکھیے اتنی تکلیفیں تھیں مکہ میں اسلام قبول کرنے پر اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اسلام چھوڑ دو بلال کو کبھی مشورہ نہیں دیا کہ بلال کیوں مرتا اے بلال یہ تو خودکشی ہوگی اسلام چھوڑ دے اللہ کو تیرے دل کا پتہ ہے حالات اچھے ہوں گے تو کر لینا ایک ایسا میسج نہیں آج ہم اپنے دوستوں کو کیا کہتے ہیں چلو جب تمہارے حالات اچھے ہوں گے پھر کر لینا کبھی اپنے کسی ایسے ساتھی سے نیکی کے کسی کام کا مشورہ نہ کریں جو وہ خود نہ کر رہا ہو کئی لوگ کورسز لے رہے ہوتے ہیں دوستوں سے مشورہ کیا جو خود نہیں لے رہے وہ آپ کو کیسے لینے دیں گے ایک ایسی بات کر دیں گے جس کے بعد آپ خود پیچھے ہو جائیں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسا نہ کرے بھاگنے والا بنا دے نیکیوں سے نہ بھاگیں نیکیوں کی طرف بھاگیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگوں کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو فرماتے ہیں تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں دیکھیں نبی کے دور میں یہ تھا تو آج کیا حالات ہوں گے اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے ہوشیار ہو گئے بڑے ایکسپرٹ ہیں اپنا نفاق چھپا لیتے ہیں بعض لوگ واقعی ایسے ہیں نیکنے میں بہت نیکی ثابت کرتے ہیں دلوں میں نفاق ہو سکتا ہے تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے اب ایک دوسرا گروہ جس کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ان کے عمل ملے جلے ہیں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ بد بھی ہیں بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور مہربان ہے اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں ان کو آگے بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اب سورۃ توبہ دیکھیے بار بار توبہ کا ذکر ہے और इनकी खैरात को कबूल करता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहीम है। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम अमल करो, और अल्लाह और इसका रसूल भी और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है, फिर तुम इसकी तरफ पलटाए जाओगे। जो खुले और छुपे सबको जानता है, और वो तुम्हें भी बता देगा कि तुम क्या कर रहे थे। यहां देखिए एक अगला फिर ग्रुप आ रहा है, तो समझ लीजिए आखरूना की बात क्या है। एक होते मुनाफिक और एक होते गुनाहगार मोमिन, दोनों में बहुत फर्क है। बाद जब हम जब मुनाफिकों की बातें सुनते हैं तो हम परेशान होते हैं कि शायद हम सब मुनाफिक हैं। तो देखिए अपने ऊपर तो हमेशा घड़ी नजर रखे, सहाबा अपने आप को मुनाफिक समझते थे। 80 के करीब सहाबा जिनमें सहाबियात भी थी, जिनको खुद पर खदशा था कि हम मुनाफिक हैं, और यहां तक रिवायात में आता है कि निफाक से खुद को पाक मुनाफिक के सिवा कोई नहीं समझता। यानी जितना सच्चा खरा ईमान होगा उतना आप खुद को मुनाफिक समझेंगे। लेकिन दोनों में फर्क है, गुनाहगार मोमिन और निफाक वाले में। मुनाफिक को इस्लाम से बुगज होता है, दुश्मनों से मिला होता है, इस्लाम का जवाल चाहता है। गुनाहगार मोमिन कौन है? पहली बात, सुस्त होता है, लेजी लेजी वो है। दूसरी बात है, टालता रहता है नेकियों को, जरा कर लूं, अच्छा अभी पढ़ती हूँ नमाज, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, ख्वाहिश परस्त हो जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की यहां बात की कि शुरू में थोड़ा पीछे रहे, बाद में मिल गए। खलत अमलन सालेहन को देख लीजिए, तो मेरे और आप सबका यही तो नहीं हालात? नेकी का मौका भी कोई नहीं छोड़ते और गुना भी कोई नहीं छोड़ते। रमजान सारा नेकियों में और ईद की सारी पार्टियां अपनी मर्जी की चलेंगी। तो ऐसे लोग फिर वो खिचड़ी सी पकाई हुई है इधर ना उधर के। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ऐसे लोगों को तुम क्या कह दो कि देखो अल्लाह जानता है। इस रमजान में अगर आप देखिए कि अगर हम आखरून थे, अगले साल साबिकून बन जाएंगे। तीन गिरोह अभी तक हमारे सामने आए हैं, साबिकून अलवलून फौरन निकले, फौरन रेस शुरू कर दी, आखरून थोड़ा डिले के लिए डिली डैली करते करते फिर निकल गए। और अब एक तीसरा गिरोह है जिनके ऊपर ये सूरत, जिसका नाम सूरत तौबा है, और वो कौन है? मुरजौन। आइए इनको देखते हैं। वाखरून मुरजौन अली अम्रिल्लाह, कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला भी अल्लाह के हुक्म पर, चाहे इनको सजा दे और चाहे इन पर नए सिरे से मेहरबान हो जाए। अल्लाह सबको जानता और हकीम है। ये कौन लोग, इनका जिक्र आगे आएगा, यहाँ बस थोड़ा सा जिक्र कर दिया बीच में, फिर एक मुनाफिकाना रविश का जिक्र है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई इस गरज से कि इस दावत हक को नुकसान पहुंचाए, जो अल्लाह की बंदगी करने की बजाय कुफर करें और अहले ईमान में फूट डाले, और इस बजाहर इबादत गाह को इस शख्स के लिए कमीन गाह बनाए जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बरसरे पेकार हो चुका। वो जरूर कस्में खा खा कर कहेंगे हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी और चीज का नहीं था, मगर अल्लाह गवाह है वो कतई झूठे हैं। तुम हर किसी इमारत में खड़े न होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई, वही इसके लिए ज्यादा मौसूख है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह पाकीज़गी को पसंद करता है। मस्जिद दरार की बात है, थोड़ा सा समझिए कि मस्जिद नबवी के तौर पर मस्जिद नबवी मौजूद थी जो मदीना और उसके इर्द गिर्द की सारी जरूरत को पूरा करती थी। अभी इतने लोग भी नहीं थे, कुबा में कुबा की मस्जिद थी जहां कुछ मुस्लिम थे, मदीना में मस्जिद नबी थी। ये मस्जिद अपनी जगह को की जरूरियात पूरी कर रही थी, लेकिन मुनाफिक किस्म के लोग जिनको एक पॉइंट चाहिए था जहां बैठकर इस्लाम और नबी के खिलाफ साजिशें करें, तो अब वो कोई अड्डा तो बना नहीं सकते थे, कोई सेंटर अपना बनाते हो अगेंस्ट इस्लाम सेंटर, तो मदीना में कौन उनको देते जगह। उन्होंने एक साजिश की कि हम मस्जिद के नाम पर एक बिल्डिंग लेते हैं और कह देंगे मस्जिद है। करेंगे क्या कि वहां बैठ के प्लानिंग्स करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। अबू आमिर फासिक एक शख्स था जो दूसरे मुल्क से आता था, उसको बैठने की जगह मिल जाएगी। और कुछ दूसरी वजह यह कि जरा मुसलमानों के कुछ लोगों को काटते हैं, मस्जिद नबी की बजाय इस मस्जिद में नमाज पढ़ लें। अब्दुल्ला बिन उबई के साथ मिलकर, और ये सारे लोगों की कहानी थी, अल्लाह के नबी के पास मैसेज आया एक नई मस्जिद आ रही है, आप इफ्तिताह करते हैं। देखिए आपका दिल कितना खुला था, ये नहीं कहा तू मेरे खिलाफ बना रहे हो कुछ नहीं, बस ये कह दिया कि अभी बहुत मसरूफ है, हम तबूक के लिए जा रहे हैं, वापसी पे बना देंगे। अल्लाह के नबी वापस आए तो आयतें नाजिल हो गई कि बिल्कुल नमाज नहीं पढ़नी। क्या पता चला कि जब एक मस्जिद किसी जगह की जरूरियात पूरी कर रही है तो तकाबुल पे और फिर कवारियत के नाम पे कि इनकी है तो हमारी भी हो, ऐसी मस्जिदें मस्जिद तरार है। इसीलिए अगली आयतों में यही, और आज उम्मत मुस्लिमा के लिए यही मैसेज है कि मस्जिदें बनाने से ज्यादा स्कूल बनाए। मस्जिदें तो माशाल्लाह हर थोड़े मील पे बनती हैं और चलती हैं, और यहाँ तो शहर बड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मस्जिदें भरी भी लगती हैं। दुनिया के ऐसे खित्ते भी मैं देख के आ चुकी हूँ कि जहाँ वॉकिंग पे 8-8 मस्जिदें हैं। भाई इसकी क्या जरूरत थी? हमारे मसलक की, ये उस ग्रोह की है, ये हमारे गाँव की है, ये अरबियों की है, ये बंगालियों की है, ये वहाबियों की है, ये सुनियों की है, ये शियाओं की है, और इतने रंग की मस्जिद, और एक स्कूल भी नहीं है वहां पर ढंग का कि जहां बच्चे तालीम हासिल कर सकें। तो मस्जिद तो आप रात जाते भी मस्जिद बन जाएगी, पूरी जमीन मस्जिद है। इस वक्त जरूरत है दीन के इदारे कायम करने की, अल्लाह ताला हमें इसमें मुआविन और मददगार बना दे। इसीलिए अब उसी मौजू को अल्लाह ताला आगे लेके चलते हैं। अफमनसबुनजानवा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजा की तलब पर रखी हो, या जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसुबात खगर पर उठाई और वो इसे लेकर सीधी जहन्नुम में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता। ये मस्जिद जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, जिससे निकलने की अब कोई सूरत नहीं सिवाय इसके कि अब इनके दिल ही पारा पारा हो जाए। अल्लाह नहायत बाखबर और हकीम और दाना है। क्या पता चला, बेबुनियाद इमारतें कायम नहीं रहती। इखलास की बुनियाद पर दीन का जो काम करेंगे वो फलेगा भी और फूलेगा भी। जहां तकाबुल होगा, फिर कवारियत होगी, दूसरों को काटना होगा, वो बिलाखिर खत्म हो जाएगा। कटी हुई बेल की तरह वो काम खत्म हो जाता है। तो इखलास आपका और अल्लाह का राज है, इसको लेने की जरूरत है। अब अगली आयत जो इस पारे की आयत तदब्बुर है, बहुत खूबसूरत आयत है। दुआ करते हैं हम इसका हक अदा कर सकें। इस आयत को अपने अपने और अल्लाह के बीच में रखना है। आपके साथ अल्लाह ताला एक डील करना चाहते हैं, जन्नत का सौदा आपके नाम। कैसे? इन्नल्लाहश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिनों से इनके नफ्स और इनके माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। आप सोल्ड वन है, आपके दिल जिस्म दिमाग पर सोल्ड का बटन लगा हुआ है, इसलिए अब आप किसी और के हाथों में नहीं बिक सकते, ना नफ्स के, ना मुआशरे के, ना माल के, ना जॉब के, ना दुनिया के फायदों के। क्या खूबियां हैं ऐसे लोगों की? नंबर एक, वो अल्लाह की राह में लड़ते और मारते और मरते हैं। इनसे जन्नत का वादा अल्लाह के सिवा एक पुख्ता वादा है, तौरात और इंजील और कुरान में, दुनिया की तीन सबसे ऑथेंटिक किताबों का रेफरेंस दे दिया अल्लाह ने। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद का पूरा करने वाला हो? बस क्या करो, फस तब शुरू भी बेही कुमल लजीबा या तुम भी वजाली का हुआ अल्फौजुल अज़ीम। बस खुशियां मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया, बस यही बड़ी कामयाबी है। कुछ और इनकी खूबियां, अत्ताइबून आबिदून अलहामिदून अस्साइहून। अल्लाह अकबर। उसकी बंदगी बजा लाने वाले, इसकी तारीफ के गुण गाने वाले, इसकी खातिर जमीन में गर्दिश करने वाले और इसके आगे रुकू और सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, इस शान के होते हैं वो लोग, वो मोमिन जो अल्लाह से बैह का ये मामला तय करते हैं। वबशिरिल मोमिनीन, और ए नबी मोमिनों को खुशखबरी दे दो। बड़ी तवील आयात आपने मैंने सुनी, तो आप जरा इसको एक मिसाल से समझ लीजिएगा। वैसे इसकी तफसीर इंशाल्लाह हम आपको घर में भेजेंगे, अल्लाह ने चाहा। बहुत प्यारी आयत है, इस पे लेक्चर भी अलग से मौजूद है कि मोमिन बिकावा होता है। और इसी तरह से आप इमेजिन कीजिए, आपके पास आपका सेल फोन है, आप सोचती है मैं इसको बेच दूं, आप निकलते हैं, कहते चले देखती हूँ कौन इसकी कीमत लगाता है। आप घर से बाहर निकले, कोई बाहर ड्रा चलता ही मिल गया, कहा क्या कर रहे हो, कहा ये सेल फोन बेचना है, कितने का बेचेगा? वो कहते हैं मैं तुम्हें इसका $100 दे दूंगा। आप कहते हैं $100 देता, चलो कुछ तो मिल रहा है तो ये 500-600 का, लेकिन 100 मिल रहा है ले लो। आप 100 देकर जेब में डालकर लेके आ जाते हैं, एक पर्सन वो है। दूसरी सूरत ये कि आप कहते नहीं 100 का तो मैं नहीं देती, 500 का तो कम से कम था, कुछ तो मिले। आप थोड़ा और आगे जाते हैं, दो चार गलियों के बाद एक मार्केट है, वहां खड़े होते हैं, कुछ और भी डर जाते हैं। एक बंदा आता है, कहते 200 का ले लेता हूं, आप कहते हैं उसको भी दे दीजिए। अब आप 200 देकर लेकर आ गए, आप दो ये दूसरे में, दूसरी सूरत कहते मैं 200 का क्यों बेचूं, है ही 500 का और मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, नहीं लेट मी थिंक मोर, आई देखती हूँ और क्या आता है। आप थोड़ी दूर और गए, जब आगे गए तो उसको कोई ऐसा पर्सन मिल गया कि जिसकी मजबूरी यह है कि वो ब्रांड न्यू कंपनी से नहीं खरीद सकता, उसको किसी और के नाम पे इश्यू किया वही लेना है। वो कहता है कि मैं आपसे ये नया बिल्कुल है, कितना चला कोई बात नहीं, वो आपके हाथ में 500 रखता है और आपका यूज फोन जो थोड़ा सा यूज है वो खरीद के ले जाता है। कौन सा ताजिर बेहतर है, पहला दूसरा के तीसरा? तीसरा, सब्र वाला। अब मैं और आप अपने नफ्स को लेकर इस दुनिया के बाजार में निकलते हैं, पहली बोली हमसे कौन लगाता है? हमारा नफ्स लगाता है। कुछ लोग खुद के हाथों में खुद बिक जाते हैं, सेल्फ प्लीजर लोग, सुस्त क्रिमिनल, शराबी, कबाबी, जो इस दुनिया में आके ना खुद से फायदा ले रहे हैं ना किसी को दे रहे हैं। वो कहते हैं खाओ पियो मौज मस्ती जिंदगी फन गर्लग्रम, क्रिमिनल्स भी बन जाएंगे, ड्रग्स एडिक्टेड भी होंगे। ये वो फर्स्ट मिसाल है कि इन्होंने अपने आप को बड़ा सस्ता बेच दिया। कुछ लोग अपने आप से तो नहीं बेचते, खुद तो बहुत मत कनिंग है, आगे निकले थोड़ी दूर गए दुनिया को बेच के आ जाते हैं। पीपल प्लीजर, पहले सेल्फ प्लीजर, दूसरे पीपल प्लीजर। वो कहते हैं वो करो जो लोग चाहते हैं, लोगों की नजरों में बनो, लोग 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 उनका मसला है, वो आधी कीमत देकर अपने आप को ले आए। दो, तीसरा जो सबसे अकलमंद, जिसका जिक्र अल्लाह ने इधर किया, ना अपने हाथों बिकता है ना लोगों के हाथों बिकता है, बल्कि वो अल्लाह प्लीजर है। उसको पता है मेरे इस जिस्म की कदर कौन करेगा, कटा पटा जिस्म है, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, खून निकला हुआ है जख्म लगे हुए, और अल्लाह उसकी ऐसी प्यारी कीमत देता है कि अल्लाह उसको मुर्दा नहीं करता। तो जो अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफे में है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम पीपल प्लीजर हो जाए, अपने कामों को अल्लाह के लिए करने वाले बन जाए, और अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक दे। फिर आगे फरमाया, मा कान लि नबी वल्लज़ीना आमनू यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन, नबी को और इन लोगों को जो ईमान लाए ज़ेबा नहीं कि मुशरिकों के लिए मग़फ़रत की दुआ करें। इतना सख्त शक लगाया अल्लाह ने, काफिर के लिए जिंदगी भर दुआ कर सकता है इंसान, क्या अल्लाह इसको हिदायत दे, मे अल्लाह गाइड यू, मे अल्लाह मर्सी अपॉन यू, दिस दिस, इधर कुफर पे मर गया। आप ये नहीं कह सकते अल्लाह इसको जन्नत दे, क्यों, उसने जन्नत मांगी नहीं, आप उसको क्यों जन्नत में भेज रहे हैं, वो तो जाना ही नहीं चाहता। फरमाए चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आज देखिए जो रिवर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो इन आयतों पर रोते हैं, वो कहते हैं हम अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि इन पर ये बात खुल चुकी है कि वो जहन्नुम के मुस्तहिक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए जो दुआ मगफरत की थी वो तो इस वादे की वजह से थी जो उन्होंने अपने बाप से की थी, मगर जब उन पर ये बात खुल गई कि इनका बाप अल्लाह का दुश्मन है तो वो इससे बेजार हो गए। हक ये कि इब्राहिम बड़े रकीकुल कल्ब, खुदा तर्स और बुर्दबार इंसान थे। इमेजिन कीजिए इब्राहिम के दुख को, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मोमिन 8 मुद्दों से निकालकर अपने आप को रब के रास्तों में लेकर आता है। आज हम कहते हैं दिल ना तोड़ो, रिश्तेदारी ना तोड़ो, हार्ट ब्रेकिंग ना बनो, ये है वो है। क्या इब्राहिम के इस मामले से बाप नाराज नहीं हुए होंगे? तो याद रखिए, अल्लाह को नाराज करके आप सारी दुनिया को भी खुश कर लेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। कल हमने एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस किया, आप में से शायद कोई था, हमने कल अल्लाह की मोहब्बत पे बात की, आपको सुनवाएंगे। मैं ऑनलाइन से भी चाहूंगी कि इस लेक्चर को आपके साथ शेयर करें। ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंट में हमने अल्लाह की मोहब्बत की एक दुआ सीखी और उसी में हुब्बे इलाही पे बात की। ये सेव्ड है हुब्बे इलाही के नाम पे, इसका लिंक आप दें और सुने भी तब जब रोजा खुलने वाला हो, इफ्तारी के वक्त जब दिल अंदर से डूबा हो, उस वक्त अल्लाह की बात सुनना, इतना अच्छा लगा। उसमें भी यही बात हमने सीखी थी कि जब अल्लाह से मोहब्बत की है तो फिर दूसरों की मोहब्बतों को उसके अंदर कर दीजिए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाए अल्लाह का तरीका नहीं कि लोगों को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुबतला कर दे जब तक कि इन्हें साफ साफ ना बता दे कि इन्हें किन चीजों से बचना है। क्या मुझे और आपको हिदायत मिल गई? अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मिल गया। अब मैं और आप अगर भटकेंगे ना तो ये हमारी अपनी चॉइस होगी। अल्लाह कहते हैं मैंने ओपन बुक टेस्ट दे दिया तुम्हें, सब पता है क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, नहीं करोगे जिधर भी जाओगे अपनी फिक्र खुद कर लो। दर हकीकत अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, और ये भी वाकया है कि अल्लाह ही के कब्जे में जमीन और आसमान की सल्तनत है, इसी के इख्तियार में जिंदगी और मौत है, और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं जो अल्लाह से तुमको बचा सके। अब यहां से आखिरी गिरोह की बातें समझ लीजिएगा, थोड़ी सी आयतें पढ़ के फिर इस वाक्य को आपके सामने रखूंगी। लकद ताब अल्लाह अलन नबी वल मुहाजरीन वल अंसार अल्लजीन तबऊ नितबऊ फी सातिल उसरा मिन बादी मा काद, अल्लाह ने माफ कर दिया नबी को और इन मुहाजरीन और अंसार को जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया। हाईलाइट करें, असल कदर उनकी है जो तंगी तुर्शी में आपका साथ दे। आज दीन पे तंगी तुर्शी का वक्त आया हुआ है, मैं आपसे नहीं पूछती क्योंकि मुझे यकीन है इस बात का। आज के दौर में अगर मैंने और आपने दीन के लिए काम किया ना तो डबल पे मिलने वाली बात है। देखिए क्रिसमस पे लोगों को डबल पे मिलती है क्योंकि एम्प्लॉयज नहीं होते, वो दिन जब दूसरे लोग काम ना करें उस दिन लोगों को काम की ज्यादा पे मिलती है। आज उम्मते मुस्लिमा की अक्सरियत ने ये काम छोड़ा हुआ है, लेकिन दीन पे मुश्किलें बड़ी आई हुई है। वही बात मौलाना हाली की, बड़ी शान से निकला था ये दीन कहां से, लेकिन आज गरीबुल गुरबा है दुनिया में। आज मुसलमानों को इस्लाम के लिए काम करना, वल्लाह ही मैं नहीं कहती लेकिन बात समझिए, जो अल्लाह के नबी के दौर में सहाबा को मुकाम दिया अल्लाह ने, आज के दौर में जो बच्चे दीन के लिए निकलेंगे वो भी वही मुकाम पालेंगे। आज भी अबू बकर मौजूद है, आज भी उस्मान आएंगे। आज के दौर के अली को और उमर को ढूंढिए, ये आपकी कोखों से पैदा हो गए और हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे और आपको अपना हिस्सा डालना, सेल पे जन्नत डिमांड जो नहीं रही, जब दीन के काम की डिमांड होती है तो लोग तड़पते हैं, हाय हमसे काम ले लें, आप कहते सॉरी रख लें, वेटिंग लिस्टों में रखते हैं, अभी काम हो रहा है, और जब काम ना हो रहा और जरूरत हो तो आप कहते हैं यस आज दीन का काम कोई नहीं हो रहा, इसलिए आज सेल लगी हुई है, सस्ता ले लो, एक की जगह दो ले लो, बाय वन गेट वन ले लो। अल्लाह कहते हैं जिसने नबी के साथ तंगी के वक्त में काम किया अल्लाह उनको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर जिन में से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल हो चले थे, सच्चे लोगों के दिलों में भी डाउट्स आ जाते हैं, काम करते करते एकदम बीच में फ्लक्चुएशन आएगी, क्या कर रही हूँ, फायदा नहीं हो रहा, छोड़ दूं, कुछ और करूं, अपना सीखूं और पढ़ लूं। और मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ 10 साल से पढ़ पढ़ के पहाड़ बन चुके हैं इल्म के, लेकिन अभी उनकी जात से वो खैर नहीं मिल रही कि जो अपने तस्किए तरबियत के बाद दीन के साथ जुड़ने और हिस्सा बनने वालों में। आप एक दफा कुरान सीख के रुकते थोड़ी हैं, आप तरबियत लेते हैं, नूरुल्लाह नूर कोर्स में आते हैं, फिर आपको क्लासेस मिल जाती हैं, आप क्लास इंचार्ज, कोर्स इंचार्ज। कई ऐसे साथियों को मैं जानती हूँ अपनी क्लासेस में, छह छह दफा हो गई, छठी दफा फिर सबीलुल जन्नत सुन रहे हैं, और हर दफा कहते हैं जो आज इस दफा सुना है वो बात पहले नहीं हुआ। तो सिखाने वाला ज्यादा सीखता है। आप अगर इस क्लास में ग्रुप लीडर के तौर पर बैठी होंगी तो आप तब भी सुन रही हैं, क्लास इंचार्ज हैं, फिर अगले साल सुनेंगी। तो याद रखिए कि ये खुद को आलिम बनाना ये वक्त नहीं है हमारे लिए, ये तरीकाकार भी दुरुस्त नहीं, उसके लिए 10-12 साल की उम्र चाहिए थी, वो फितरी दौर था। अगर आज इस्लाम आएगा ना, आप 8-10 साल की बच्ची को डाले मदरसे में, 8 साल में माशाल्लाह वो इल्म सीख के निकलेगी, दुनिया को सर्व करेगी। अब मैं आप अपनी उम्रों को देखिए, आधी जिंदगी तो हमारी गुजर ही गई ना, गुजरने के करीब तो हो गए, चलिए इसको लगा लीजिए आप, मैं बताइए अगर अब हम इल्म के पहाड़ी बनते जाएंगे, इस कोर्स को उधर जाएंगे, उससे सीखेंगे उससे सीखेंगे, सर्व कब करेंगे? ये वही बात है, अब खाना पका रहे हैं पका रहे हैं पका रहे हैं, अब लोग कहेंगे सर्व तो करो प्लीज, दे दो भूख लगी हुई, आप कहते एक और डिश बना लो, सैलड रह गए, चाय रह गई है, वो कह के मेरे बच्चे सो गए मैं घर जा रही हूँ। आज के दौर में नीड ऑफ द आवर क्या है, पहले सीखे तरबियत तज़किया, फिर साथ साथ सीखते जाएं और इस दीन को फैलाएं। इंशाल्लाह आगे एक आयत आ रही है, उसका हक आज नहीं अदा होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको उसमें से मिजाज जरूर समझ आ जाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनमें से कुछ लोगों के दिल टेढ़े हो गए थे, मगर जब उन्होंने इस टेढ़पन का इत्तबा ना किया बल्कि नबी का साथ दे दिया तो अल्लाह ने इनको माफ कर दिया। तो दिल तो पलटते ही रहते हैं, अल्लाह अमल को देखता है। बेशक इनका मामला इन लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी का है, और इन तीनों को भी उसने माफ कर दिया। वाला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिकु, ये हैं वो तीन लोग जिनके बारे में इस सूरत में तौबा का तज़किरा है। इन तीनों को भी इसने माफ किया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब जमीन अपनी सारी वसत के बावजूद इन पर तंग हो गई और इनकी अपनी जानें इन पर बोझ बन गईं, मगर उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पना अल्लाह के दामने रहमत के सिवा नहीं। तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से इनकी तरफ पलटा ताकि वो इसकी तरफ पलट आए, यकीनन वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। ये कौन लोग थे? तीन सहाबी, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और रबी थे, जिनका मामला क्या था ये कहानी बड़ी तवील है, इंशाल्लाह ये आयतें भी आपके साथ शेयर की जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन आयतों पर एक दर्स भी है। मैं तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन ये नाम की दावा सीढ़ी है, वो इसी आयतों का वाक्य है। किस्सा मुख्तसर खुलासा क्या है कि काब बिन मालिक जो शायर भी थे अमीर भी थे, ये अपनी कहानी सुनाते हैं कि जब तबुक की तैयारियां हो रही थी तो मैं देख रहा था हर घर में तैयारी हो रही है, लेकिन मैं पीछे रहा, अच्छा भी कर लूंगा, मेरी सवारी तेज है, बाद में निकलूंगा, इतने में काफिला निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब रात को क्या जाना है, सुबह जाऊंगा। अगले दिन सुबह हुई तो सुस्त पड़ गया, अब पता नहीं किधर होंगे, बस कहते हैं सिर्फ सुस्ती की बुनियाद पे पीछे रह गया। अब तो मेरा हाल बुरा था, मदीना में जिधर नजर डालता हूँ या मुनाफिक है या बीमार या औरतें या कमजोर बूढ़े लोग हैं। अब मुझे अफसोस हुआ मैं क्यों पीछे रह गया, लेकिन वही बात है सुस्ती के लिए पीछे रह गए। हर वक्त गुजरता रहा, खबरें आती रहीं, उधर से क्या आ रहा है उधर से क्या हो रहा है, बिल आखिर नबी सल्लम के आने का वक्त आया। मैंने देखा मुनाफिक लोग अल्लाह के नबी के पास जाके झूठे सच्चे बहाने करके आपसे दुआएं लेके निकल रहे हैं, ये मजबूरी थी वो थी। कहते मेरे भी दिल में आया कि मैं भी बहाना कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं मैं सच बोलूंगा। खैर अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा तो मैं कभी आसूदा रहा ही नहीं, इतना माल दौलत अल्लाह ने कभी पहले नहीं दिया, मैं सिर्फ डिलेइंग की वजह से रह गया हूं। सच बोला तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा फिर आप इंतजार कीजिए, अल्लाह आपके मामले में जो फैसला करेगा वो करूंगा। जब बाहर निकल के आए तो इनके रिश्तेदारों ने इनको डांटना शुरू कर दिया, तुम तो बेवकूफी रहोगे, देखो लोग झूठ सच करके अल्लाह के नबी की नजरों में भी अच्छे बने हुए हैं और तुम सच बोल रहे हो। कहते हैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रेशर में आकर मैं एक लम्हे के लिए थिड़क गया कि जाके अल्लाह के नबी को कह दो नहीं अल्लाह के नबी मैं मजाक कर रहा था मेरी ये मजबूरी थी, लेकिन इतने में मैंने पूछा ये बताओ कि मेरे वाले हालात किसी और के भी हैं, लोगों ने कहा हाँ एक और भी आप जैसे वो है। कहा जब मैंने कहा अच्छा कोई और है, बस फिर मैं फॉर्म हो गया। मैंने कहा मैं सच बोलूंगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान किया हुआ कि इनके साथ सब सोशल बाइकॉट कर ले। 40 दिन पहले कोई इनसे बोलता नहीं, बात करता नहीं, नमाजों में जाते तो कोई सलाम नहीं करता, जवाब नहीं देते, कुछ नहीं है। कहते बाकी दोनों साहब तो घर में बैठ गए लेकिन मैं मस्जिदों में जाता रहा, और हाल ये था कि मदीना की गलियां मुझ पर तंग थी। जिधर से गुजरता सलाम करता, कुछ भी करता, लोग मेरी बात का जवाब ना देते। हत्ता कि एक दिन अपने कजन को कहने लगे कि तुम बताओ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता, तो उन्होंने कहा अल्लाह उसका रसूल जानते हैं, मुझे नहीं पता। फिर 40 दिन के बाद खबर फैली कि अपनी बीवियों को भी छोड़ दो, क्या करें, तलाक दें? का नहीं तलाक नहीं दो, का उनको दूसरों ने घरों में भेज दिया। खैर किस्सा मुख्तसर लंबी बात है, लेकिन फिर 50 दिन के बाद इनकी तौबा कबूल हुई, अल्लाह के नबी पे ये आयतें नाजिल हुई। तो उस वक्त भी मदीना की गलियों में लोग भाग भाग के इनको खुशखबरियां दे रहे थे। जो कल सलाम का जवाब नहीं दे रहा वो आगे बढ़ के मुबारके दे रहे हैं। ये डिसिप्लिन था मदीना का, लीडर की एक कॉल पे सब अपने कामों को रोकते थे। और कहते हैं इतनी खुशी हुई उस दिन मुझे कि मैंने कहा अल्लाह के नबी आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है, क्या मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में दूं? कहा नहीं सारा नहीं दो, कुछ रख लो। उनकी खुशियों का, हम होते तो खुशी में पार्टी रखते, सेलिब्रेशन, हमारा काम सिर्फ सेलिब्रेशन रह गया। तो इसमें बहुत सारे वाकयात हैं। आज अगर आप देखें तो उम्मत मुस्लिमा पे भी यही हालात हैं। ताकत अलैहि मोलार्द, पूरी दुनिया के वीजे हम पे रुके हुए हैं, पूरी दुनिया हम पे परेशान है। क्यों? हमने ये जिहाद छोड़ा। जिहाद के इनकार पर उम्मतें परेशान होती हैं, नफसाती जिहाद नहीं करते, जुबान का, कलम का। और अल्लाह ताला आप देखिए, सख्तियां हम पे, इमिग्रेशन हम पे मुश्किल, वीजा हमारे लिए मुश्किल, ये अल्लाह की सजा है। अगर हम दीन का काम कर रहे होते तो अल्लाह ताला हमें बहुत सहूलतें देता। अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी सुस्तियां खत्म हो जाएं और अपने आप को हम ले आए। चूंकि इन्होंने सच बोला था इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा सादिकीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। ये है दोस्ती का मेयार। झूठी दोस्तियां ना करो, फिक्शन की दोस्तियां नहीं, फिल्में गाने ड्रामों वाली दोस्तियां नहीं, कुरान की दोस्ती सबसे सच्ची है। इसलिए कि सच्चे लोगों के साथ मिलकर खुद नेकी के काम करने को दिल चाहता है। मां का नली अहलिल मदीना थी, और मदीना के लोग और जो इर्द गिर्द के रहने वाले बदवी थे उनको ये बिल्कुल सूट नहीं करता था, ये जेबा नहीं था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठे रहते और उनकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फिक्र में लग जाते। इसलिए ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह की राह में भूख प्यास और जिस्मानी मुशक्कत की कोई तकलीफ उन्होंने सही हो। सोचिए, और मुनकरीन हक को जो राह ना गवारे इस पर कोई कदम वो उठाएं, और किसी दुश्मन से अदावत हक का कोई इंतकाम वो लें, और इसके बदले में इनके हक में एक अमल साले ना लिख दिया जाए, यकीनन अल्लाह के हम मोहसिनों का हक के खिदमत मारा नहीं जाता। तीसरी दफा ये बात आ रही है, अल्लाह आपके अजर जाया नहीं करेगा, अल्लाह आपकी पे नहीं रखेगा, अल्लाह आपको आपकी सैलरी पूरी दे देगा, क्योंकि अल्लाह अजर नहीं मारता। इस तरह ये भी कभी ना होगा कि वो राह खुदा में थोड़ा या बहुत कुछ खर्च करें, और सही और जिहाद में कोई वादी वो पार करें, और इनके हक में इसको लिख ना लिया जाए ताकि अल्लाह इनको इनके अच्छे कारनामे का सिला अदा करे। इसके पीछे भी एक सहाबी है, वो भी कहते हैं मैं पीछे रह गया, डिलेइंग थी बस, किसान थे, काम करते थे। हत्ता के अल्लाह के नबी के जाने की खबर मिली, चले गए। मैंने कहा अच्छा चलता हूँ जाता हूँ, सुस्त हो गया। इतने में दोपहर हो गई, कहते हैं अपने खेतों से काम कर रहा था, हटा, बीवी आई खाना लेकर, दरख्त के नीचे उसने पहले पानी का छिड़काव किया, जरा देखिए उनकी लग्जरी, पानी का छिड़काव किया, फिर कपड़ा बिछाया, फिर मेरे आगे गर्म रोटी और सालन रख दिया, जो भी दाल साग होगा। कहते हैं बस एक लुकमा तोड़ने की देर थी, और मैं वो लुकमा मुंह में रखते हुए सोच रहा हूं कि तुफ है तुझ पे, तू यहां आराम और ऐश और मजे कर रहा है, और अल्लाह का नबी इस वक्त धूप और गर्मी में कहां होगा। बस कहते हैं फिर वो लुकमा अंदर नहीं गया। मैंने वो लुकमा छोड़ा, बीवी से कहा कि सवारी को तैयार करो, और मैंने अपनी सवारी पे बैठकर एड़ लगाई और मैं काफले की सिमत में चला गया। दूर से गुबार उठता हुआ देखा तो अल्लाह के नबी ने कहा ये अबू खैसमा होंगे। साहबा कहते जो साहबी नहीं आते थे अल्लाह के नबी उनकी राह देखते रहते थे, नजरें दरवाजे पे लगी रहती, अभी आएंगे अभी आएंगे। और जब अबू खैसमा को देखा तो अल्लाह के नबी का चेहरा खुशी से हुआ, कहा मुबारक अबू खैसमा के तू आ गया, अल्लाह ने तुझे तौफीक दी। तो कभी डिले भी हो ना फिर भी निकल आए। मैं कहती हूँ 15 मिनट रह जाए ना क्लास के फिर भी निकल आए, एक लम्हा, एक अल्लाह को सिर्फ ये दिखा दें कि अल्लाह हो सकती है हमसे सुस्ती कमी, लेकिन सुस्ती के बाद सुस्त होके बैठ जाना ये दुरुस्त नहीं है। यहां से देखिए सहाबा अल्लाह के नबी के बारे में क्या सोचते थे। कि हम घरों में बैठे हैं और वो गर्मी सह रहे हैं, धूप सह रहे हैं। आज हम क्या कहते हैं, चंद लोग वो कर लेंगे, हमारी क्या। तो आज हम उम्मते मुस्लिमा को एक बड़ा खूबसूरत सबक सिखाया जा रहा है। दुआ कीजिए ये आयतें हमारे दिल पर आ जाएं। ये आयत की तफसीर सना आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये आज के दौर में करने का काम यही है। समझ नहीं आता ना कहाँ से शुरू करें, डोरियां उलझी हुई हैं, धागे उल्टे पड़े, करें क्या, शुरू क्या करें, नमाजें शुरू करें, जिहाद शुरू करें, इल्म सीखें, या करप्शन खत्म करें, शराब के साथ जिहाद करें, या कभी हिजाब के साथ करें। ये आयतें आपको एक खुलासा देंगी इंशाअल्लाह ताला। आइए इसको देखते हैं। और कुछ जरूरी ना था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि इनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को खबरदार करते, ताकि वो गैर मुस्लिमाना रविश से परहेज करते। देखिए, जब गज़वे तबूक के सफर की इतनी शान हुई, तो अब खतरा क्या हो गया कि अगर आज के बाद कोई और जंग की कॉल आई तो सब निकल जाएंगे, कोई भी वापस नहीं आएगा, सब नहीं रुकेंगे। तो उसमें भी मदीना का निजाम बिगड़ना था। तो यहां एक असूल सिखाया कि सब जिहाद के मैदान में नहीं जाएंगे, कुछ इल्म के मैदान में आएंगे। इल्म का यहां एक खूबसूरत नेटवर्क बता दिया, एक कॉमन प्लेस हो किसी भी शहर में, किसी भी जगह में। आज तो चूंकि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के जराए हो गए ना, तो बात समझ नहीं आती। तरीकेकार के किसी बड़े शहर को चूज किया जाए, वहां इल्मी मरकज कायम किया जाए, फिर वहां साहिब इल्म लोग हों, इर्द गिर्द से सब लोग आए। मिसाल आपके शहर के, अब जो कुछ नाम मुझे याद हो गए, सही तो पूरा मैं एक भी नहीं बोल सकती अभी, अब के हर इलाके से कोई आए, चंद उधर से हैं, चंद उधर से हैं, चंद उधर से हैं, फिर सब बैठकर वहां कुरान सीखें, क्योंकि सारे तो नहीं निकल के आएंगे। सारे वहां बैठें, सीखें, फिर उसके बाद ट्रेनिंग लें, जिसको मैं अपनी जुबान में कहती हूँ। और इसी आयत पे हमारा पूरा एजुकेशनल सेटअप है, नूरुल कुरान का पूरा स्कूल का सिस्टम इस एक आयत पे है कि आप सब बैठे, मुख्तलिफ इलाकों से आए, कुर्बानियां देंगे, जो आ सकते हैं वही आएंगे, जो घर से नेट पे कर सकते हैं करें, 1 साल 1.5 साल बैठ के सीखें, सुकून से सीखें, जो कुरान की मिजाज समझ आए, अपनी स्किल्स लें। 5 राइट्स ऑफ कुरान है, बेसिक हदीस है, बेसिक ग्रामर कर करा के उसके बाद नूरुल्ला नूर की सूरत में चाहें तो 4 महीने में, चाहें ये आपके ऊपर होता है, आप ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें पूरा कुरान दोहराया जाता है, पूरी पढ़े हुए 1.5 साल की दोहराई प्लस ट्रेनिंग स्किल्स, आपको ग्रुप लीडर ये वो करना, और उसके बाद आप में से अब फिर सारे नाम लें इलाकों के, जिधर जिधर से आप आए आप सबको उधर असाइन कर दिया जाएगा, और आप अपने अपने इलाके के लोगों के लिए रहमत की बारिश बनेंगे। और ये सिर्फ कोई ड्रीम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज फ्रेंचाइज होके नॉर्वे में भी एक हद तक चल पड़ी है, लंदन में भी चल रही है, और भी शहरों में मौजूद है। और ये जो आपके पास मेरा आने का फैसला था, यकीन करें ये फैसला कभी ना मैं करती अगर इस आयत पे अमल ना होता। कितनी मेरी ना समझी होती कि 18 मंथ जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, अब एन रमजान जो एक पीक का वक्त था, मैं उस वक्त उनको छोड़ के आ जाती और वो सारे घरों में सो जाते। इस वक्त भी आप किसी से फोन करके पूछ लें कि जितनी हमारी लंदन क्लास जो माशाल्लाह पूरी हुई 1.5 साल 1.5 साल में, उन सब को हमने पूरे लंदन में जहां तक अप्रोच हो सकती है वहां साइन किया हुआ है। 3 3 लोग एक एक जगह पे, एक टेक्निकल पे है, एक जो है वो रिसेप्शन पे है, तीसरा यहाँ हेल्प करता है, और वो खुद पूरा दौरा कुरान पिछले साल वाला सुन के रिकैप करा रहे, डिस्कशंस कर रहे, और दूसरी जगह दूसरे, और मेन इंचार्जेस वो सबको जाके ट्रेस करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब सारे फिगर सामने आते हैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अगर मैं लंदन में होती तो इतने ही लोगों ने फायदा शायद उठाना, तो इतने भी नहीं, उससे ज्यादा उठा रहे हैं। बट की चीज, एक इलाके में आगे 15 20 उधर 15 20 इधर, अब जब 10 15 लोकेशन आप एक शख्स बना देते हैं, तो आप देखिए कि लोगों के पास आप पहुंच गए ना। लोग कहते हैं प्यासा कुएं के पास आता है, अल्लाह का दीन सिखा रहा है, तुम कुएं क्यों बनते हो, इतने नहरों की हो, तुम बादल बनो, तुम जाओ बरसाने के लिए। जिस जगह कुरान की ये बारिश हो जाए, यकीन करें अगर वहां के साथियों में खैर हो और वो डेडिकेशन के साथ काम करने वाले हो, 2 साल के अंदर वहां खैर के चश्मे फैलते हैं। आज ये नहीं हो सकता कि इमाम काबा और हरम के मुफ्ती हमारे मुल्कों में आके पढ़ाएं, इज इम्पॉसिबल। चंद लोगों को अगर आलिमों के नाम पर हम लकब देकर उनको बैठा दें कि वो ही आके सीखे सीखा, ये नहीं होगा। इसके लिए जिस्म की एक मिसाल उस लेक्चर में भी दी हुई है, आपको भी इशारा देती हूँ। अपने जिस्म को देखें कि हमारा दिल जो है ना, ये पंप करता है, पूरे जिस्म में ब्लड जाता है। अब दिल से जो पाइप्स निकलती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, वो बहुत मोटी मोटी होती हैं, फिर उसके आगे सप्लेटिंग है, या इससे सब बारीक जो हमारी कैपिलरीज हैं बॉडी में, ये कहां तक जाती हैं, पूरे जिस्म में खून का जाल फैला हुआ है। अब अगर आप कहते हैं कि वो 4 मोटी वेन्स जो दिल से निकलती है, वो ही पूरे जिस्म को खून देंगी, तो आपकी उंगली में तो वो पाइप पूरी नहीं आएगी, वो पाइप आपकी उंगली से मोटी है। अल्लाह ने उसको फ्रेंचाइज किया। बारीक करते 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 आप उंगली काट के देखें, इसमें इतनी पतली जालियां हैं, तो मुझे और आपको ये पतली सी वेन बनना है। ये आपका एक इलाका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 10 इलाके आपके शहर के, आप 10 इलाकों में दीन फैलाना चाहते हैं। अल्लाह से मोहलत मांग लें कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे, मैं कुछ करके जाऊं, खैर करूं। आप उस दीन को बड़े से छोटे पे करते करते लें। मैसेज एक ही है। फ्रेंचाइजेशन देखे मैकडोनल्ड सारी दुनिया में क्यों आ गया? एक क्वालिटी, एक मेयार। जब आप एक सिस्टम के अंदर है, आपको फिर काम आता है। जो साथ जुड़ के काम करते हैं, माशाल्लाह, पूरी दिन रात की ट्रेनिंग। मैं कहती हूँ ये पढ़ाना इतना आसान है, आप मुझसे एक पारा और अभी भी करवा ले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हूँ। ये बहुत आसान है, लेकिन मैनेजमेंट पीछे से कंट्रोल करना एक पूरा सेटअप है। तो अल्लाह ही उन लोगों को जजा देगा जो दिन रात इन कामों में। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए, तहदीस नेमत के लिए, और इस हदीस पे अमल करते हुए कि मल्लम यशकुरे नास लम यशकुरे अल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। मैं अपने वो तमाम साथी वर्ल्ड वाइड है माशाल्लाह, मुझे उनके नाम नहीं सबके पता होंगे, लेकिन मेरे दिल में इतनी कदर और इतनी वैल्यू उनकी कि अल्लाह तो इनको लंबी उम्रें लगा दे, इनके बच्चों को, इनकी आंखों की ठंडक बना, जो इस वक्त इस काम में। आप ये ऑनलाइन के जो साथी इस वक्त सुनते हैं, अल्लाह कहाँ कहाँ ले रहा है, मुझे गिनना तो अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि अभी ना आने वाले तो बहुत सारे हैं। तो इस वक्त मुझे और आपको उम्मते मुस्लिमा में इस तरह दीन को आम करना है। ग्रॉस रूट तक जब तक कुरान का पानी नहीं जाएगा, उम्मते मुस्लिमा की फसल नहीं बन पेगी। आप पत्तों को पानी ऊपर दे दें तो दरख्त हरा होगा? कोई नहीं होगा। जड़ों में पानी देना। आप कहते किसी शहर में 10 आलिम, 5 दर्स देने वाली, हर शहर में चंद बाजीज हैं, एक फातिमा बाजी, एक आयशा बाजी, एक खालदा बाजी है, एक आयशा बाजी है, वो दर्स दे रही है। फोन करें, बाजी दर्स का टाइम दे दें। भाई क्यों, आप क्यों नहीं बाजी बनते? उन बाजियों में क्या खूबी है? बाजी दुआ करते हैं, बाजी आज आज, भाई बाजी क्या कर सकती है, आप बाजी बन जाएंगी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज अगर आपके दिल में ये तड़प जागी तो 5 साल बाद इस शहर में शायद 500 बाजियां होंगी। और ये खुशकिस्मती है। जब तक आप टीचर्स तैयार नहीं करेंगे, उम्मत नहीं संवरेगी। आज हमारा जो मजहबी तबके का आम तरीका कार दुरुस्त नहीं, वो उस हद तक ठीक नहीं है जैसे होना चाहिए। उन्होंने टीचर्स नहीं दिए सोसाइटी को। मिनापली मेरी है, अब मेरी। अगर किसी दूसरे ने मदरसा भी खोलिया, कहते ये मेरे मुकाबले पे खोला। तो इतने तंग दिल लोगों से तो दीन भी नहीं मिलेगा। तो बहरहाल इस आयत के अंदर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। या अय्युल्लज़ीना आमनु क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फार, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जंग करो इन मुनकरीन हक से जो तुम्हारे पास हैं। आप और मैं बस इसमें ये हाईलाइट कर लें, यलूनकुम असूल है, इस्लाह करीब के लोगों से शुरू होगी। स्टार्ट विद योर सेल्फ, चैरिटी बिगिन एट होम। अल्लाह कहते तुम अपने इर्द गिर्द वालों की फिक्र करो, दूर वाले बाद में खुद ही मुसलमान होंगे। हम कहते हैं जरा फुलाम मुसलमान हो जाए, फुलाम मुल्क का बादशाह, फुलाम मुल्क का मुसलमान होगी ना, फिर हम मुसलमान होंगे। अल्लाह कहते हैं तुम अपने करीब की फिक्र करो, और चाहिए कि वे तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो इनमें से बास लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं, कहो तुम में से किसके ईमान में इस सूरत ने इजाफा हुआ? जरा सोचिए, हम तकरीबन 3 घंटे से ये सूरत पढ़ रहे हैं, और यहां से उठते आप में से कोई कहे क्या फायदा हुआ तुम्हें आज सुन के? ये टॉन्ट कर रहे हैं, नबी की महफिलों से उठते फिर आपस में शगुफे छोड़ते हंसते, भाई कोई फायदा हुआ आज पढ़ने का? ऐसी बातें बिठा दिए, इतना लंबा रोजे के साथ बैठ गए, हमें तो इतनी मुश्किल है। तो ये वो लोग होते हैं जिनके दिल किताब के साथ नहीं होते, जिनके दिल बाहर है। अंदर बहुत शरीफ बने होते हैं, बाहर निकलते उनकी बातों की टोन बदल जाती है। क्या कहते हैं? मजाक के तौर पर मुसलमानों से, कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ? जो लोग ईमान लाए हैं उनके ईमान में तो फिल वाके हर नाजिल होने वाली सूरत ने इजाफा ही किया, और वो इससे दिल शाद हैं। आप ऐसे हैं? ये आप सबकी बात है। जो आपके चेहरों पे खुशी है, इससे पता चलता है कि आपका दिल इस किताब से खुश है। लेकिन वामल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरदुन, और लेकिन वो लोग जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है, कौन सा? निफाक का रोग। निफाक के साथ बंदा इतनी देर नहीं सुन सकता, इम्पॉसिबल है, टॉलरेंस ही नहीं रहती। फरमाइन की पुरानी निजासत पर हर नई सूरत ने एक और निजासत का इजाफा कर दिया। जितना सुनते जाते हैं उतने सख्त होते जाते हैं, स्टबन बनते हैं। वो कहते हैं हमें भी आता है, हम सब जानते हैं। और वो मरते दम तक कुफरी में मुब्तला रहे। क्या ये लोग नहीं देखते कि हर साल 1-2 मरतबा ये आजमाइश में डाले जाते हैं? आज तो मुसलमान 1 साल में 10-12 बार आजमाइश में डाले जाते हैं। हर 2 महीने बाद एक नया इशू शुरू हो जाता है, फोरम्स में, प्लेटफॉर्म पे, और पूरी दुनिया में खबरों में देख लीजिए। अल्लाह कहते हैं मैं आजमाइशों में डालता हूँ, मगर इस पर भी वो तौबा नहीं करते, ना कोई सबक लेते हैं। जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आंखों की आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं, कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा, फिर चुपके से निकल कर भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये ना समझ लोग हैं। औसुबिल्ला, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। फिर अल्लाह आपको और मुझे एक नेमत का एहसास दिलाते हैं और वो क्या है, लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, देखो लोगों तुम्हारे पास एक रसूल आया है। ऐसे लगता है ना हमारे पास ही आ गए, अल्लाह के नबी के आने को एक नेमत करार दिया जा रहा है जो खुद तुम ही में से हैं, यानी इंसान है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना इन पर शक है, तुम्हारी फलाह का वो हरीस है। दुआ कीजिए अल्लाह में यही हिर्स लग जाए जो नबी को, अच्छे लीडर की सिफात हरीस होना कि उनको फलाह मिल जाए, काम में जुटावा। ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। अब अगर ये लोग आपसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी इनसे कह दीजिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कह दो कि मेरे लिए तो अल्लाह ही काफी है, कोई माबूद नहीं मगर वो, और इसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक अर्श अजीम का। यही मैसेज है, अल्लाह पे तवक्कुल, हस्बी अल्लाह। हजरत उमर कहा करते थे सूरत तौबा के आखिर की अगर ये आयतें तीन होती तो मैं इसको एक अलग सूरत का नाम दे देता, इतनी स्ट्रांग आयतें हैं। और सुबह शाम 7 दफा अल्लाह के नबी इनको पढ़ते थे और कहा कि दुनिया और आखिरत के सब गमों से बंदा बेनियाज होता है, और मैं इसकी सबसे बड़ी गवाही देने को तैयार हूं। मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी की इस बात पर मैं गवाह हूं कि जब से ये कलमात जिंदगी में आए, दुनिया तो दुनिया आखिरत के भी गम कम हो गए। और अल्लाह तआला से दुआ कि हमारी नजरें अपने ऊपर लगा ले। तो ये था आज का टारगेट, अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ात दे, आफियत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। पारा नंबर 10 की आयत उम्मत एक ही है, सूरत तौबा की आयत नंबर 12। व इन नकसु ऐमानहुम मिन बादि अहदिहिम व तअनु फी दीनिकुम फक़ातिलुल अइमतल कुफ्रि इन्नहुम ला ईमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। और अगर अहद करने के बाद अपनी कस्मों को वो तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में ताने करने लगे तो इन कुफर के पेशवाओं से जंग करो, ये बेईमान लोग हैं और इनकी कस्मों का कोई भी एतबार नहीं, अदब नहीं कि ये अपनी हरकत से बाज आ सके। यहाँ लफ्ज देखिए आइम्मा, अगर आप इन सारे लफ्जों को जमा करें ना, इमाम, उम्मत, ओम और आइम्मा, ये सब एक ही रूट से है। यहाँ से एक यूनिवर्सल रियलिटी जो हमें पता चलती है वो क्या है कि जैसी माँ होगी वैसी उम्मत होगी, और जैसे आइमा होंगे यानी आपके लीडर्स, आपके बड़े, आपके रिप्रेजेंटेटिव, वैसी ही वो चीज चल पड़ेगी। आज उम्मत मुस्लिमा को किस चीज की जरूरत है, अच्छे लीडर्स की भी जरूरत है। और अच्छे लीडर्स मिलते कब है, ये बात हमें अब सूरत अनफाल और सूरत तौबा सिखाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।